सौदा कर लिया तो फिर क्या, आप ना सौदा करके उसके बाद थोड़ी उससे पूछते हैं ये क्यों ये कैसे, बस आप कीमत देते हैं और चीज लेते हैं, अब वो जो मर्जी करे उसके साथ कीमत के साथ। अगर आपने सौदा करना है तो फिर ये नहीं पूछना है ये क्यों हुक्म दे दिया, तो मेरी जिंदगी ही नहीं है, आपने किसी और के नाम लगा दिया, अब क्या, अब क्यों पूछ रहे हैं। जब से मैंने आपको घर की मिसाल दी, आपने शौक से बड़ा घर बनाया था, अब आपने बेच दिया, अब आपको क्या, अब कोई दूसरा तो नहीं आपकी बात सुनेगा। आपकी उस वक्त तक उसके ऊपर इजारादारी थी जब तक आपने बेचा नहीं था, अब आपने डील कर ली ना, बेच दिया तो बस सौदा हो गया, अब नहीं आप ये कह सकते, या तो सौदा ना करें, सौदा ना करें आप तो ठीक है, फिर अपने पास ही रखें। जिसने सोच लिया ना मैंने सौदा करना है, तो ये बातें आज से खत्म कर दे वो, ये दिल विल ना, कि मेरा तो दिल ये चाहता, हाय मेरी तो ख्वाहिश ये थी, वो तो ख्वाहिशात अपनी अब जन्नत में पूरी होंगी, दिल अपने अब वहां पूरे होंगे, मर्जियां वहां पूरी होंगी, अब यहां पे नहीं मरते जाना हर चीज पे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इतने दम निकल रहे हैं कि रो रहे हैं, ये नहीं मेरी चाहत पूरी, हाय मैंने अपनी चाहत को कुर्बान किया, हाय मैंने तो अपने अरमान मार दिए, हाय मेरी तो ख्वाहिशें खत्म हो गई, नहीं छोड़ दें फिर ये। इब्राहिम अलैहि सलाम को देखें, आग जल रही है, मर्जी अपनी नहीं, कहते हैं जो मर्जी उस रब की, वो जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी, ये होता है सौदा। तो जो जितना ज्यादा ईमान वाला होगा उतना ही वो अपनी जानो माल से दस्तबरदार हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है सब उसका है, और जो कहे कि नहीं मैंने अपनी मर्जियां चलानी है, वो इस सौदे में शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ये चीजें नहीं चलेंगी, मर्जी उस रब की चलेगी। तो जिसने इस सौदा करने को सोच लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वादा है, तुम ये ना सोचना कि पता नहीं हाय पूरा हो कि नहीं, पता नहीं मैं ऐसे ही दे दूं, क्या पता कल को ऐसा हो कि किसने कौन सा आके बताया, ये वादा है अल्लाह का, ये वादा है, मुतमईन हो जाओ यानी, और ये वादा किसका है, वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, कौन है अल्लाह से ज्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला, ये उसका वादा है जिससे ज्यादा कोई सच्चा है ही नहीं, जिससे ज्यादा कोई वादे को पूरा करने वाला है ही नहीं, अगर आप किसी को भी ट्रस्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली तो वो अल्लाह की बात है। अल्लाह हु अकबर। तो यहां पे हमने देखना है, अच्छा सौदा जो जिसको जो डील है ना वो इतनी जबरदस्त है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही, खुशियां मनाओ इस सौदे के ऊपर जो तुमने कर लिया है, जो तुमने उसके साथ किया है ना इसके ऊपर खुशियां मनाओ। देखें आपने देखा है कि जब किसी का बड़ा जगह कोई ठेका मिल जाता है, किसी को उसका मंजूर हो जाता है ठेका, यानी उन्होंने बिड डालते हैं, वो बिड डाली और वो उनको कोई बहुत बड़ा ऐसा ठेका मिल गया, तो वो इतने खुश होते हैं कि उसके बाद तो इसके ऊपर ही वो खुशियां मनाते हैं कि हमारी डील अप्रूव हो गई, उन्होंने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसने ये डील कर ली ना वो तो खुशियां मनाए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना खुशियां मनाने की कई चीजें बताई कि इस पे खुशियां मनानी चाहिए, इस पे खुशियां मनानी चाहिए, हम बड़ी चीजों पे खुशियां मनाते हैं, लेकिन कोई चीजें वो भी हैं जिसको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस पे खुशियां मनाए, और उनमें से एक ये चीज भी है कि जिसने ये सोच लिया कि अल्लाह के साथ ये डील करेगा उसको चाहिए कि खुशियां मनाए, जिसको ये डील समझ आ गई ना उसको पता होगा ये कितना जबरदस्त सौदा है जो उसने किया। इतनी अच्छी प्राइस पे अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज अच्छी प्राइस पे मिल जाए तो आपका हाल क्या होता है, हाय सबको बताती फिरती मुझे पता है कितनी अच्छी प्राइस पे ये चीज मिल गई, और जन्नत इतनी हाई क्लास चीज जिसमें एक कोड़ा रखने, कोड़ा समझते हैं, विप, जिसे वो उसको मारते हैं, चाबुक जिसको कहते हैं, जैसे घोड़े को भी मारा, एक घोड़ा रखने की जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर, इतनी सी जगह में घोड़ा आ जाता है, इतनी सी जमीन जन्नत की जो दुनिया और दुनिया में उस सबसे बेहतर है, कीमती है। जिसको ये बात पता है ना, उसको तो खुशियां मनानी चाहिए कि मेरी डील हो गई, उसने हमेशा की जिंदगी खरीद ली, 60-70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, इतनी जिंदगी होगी, इतनी छोटी सी जिंदगी को देकर उसने वो जिंदगी खरीद ली जो हमेशा की है और कभी खत्म नहीं होने वाली, उसने वो जवानी खरीद ली जिसके लिए लोग दुनिया में आज पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उसने वो हुसन खरीद लिया कि जिसके लिए लोग यहां पर कुछ भी लुटाने को तैयार हो जाते हैं, हमें ऐसा हुसन मिल जाए। उसने हमेशा की खुशियां खरीद ली जिसके लिए इंसान इस दुनिया में मारा मारा फिरता है इसकी तलाश में, तो उसने ऐसी चीज खरीदी है, कोई मामूली बात नहीं है ये, उसने बहुत बड़ा सौदा किया है, उसने हमेशा की सेहत खरीद ली जिसकी खातिर लोग देखें आज सारा कुछ बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि उसने अल्लाह की रजा खरीद ली जिसका तो कोई मोल ही नहीं, उसने अल्लाह का दीदार खरीद लिया जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, ऐसा सौदा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा सौदा, इतना जबरदस्त सौदा। और ये सौदा हम सब कर सकते हैं, इस बै में हम सब शामिल हो सकते हैं, इस ये अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया। आपको पता है कई दफा ऐसे होता है कोई कोई अच्छी प्राइस पे चीज ले आए ना और बाद में हमें बताए तो हम कहते हैं, इतने नाराज होते हैं और कहते हैं क्यों, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी ले लेती, अब आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको अपना हमदर्द वो लगता है जो आपको बताता है जब अच्छी चीज कोई मिल रही हो अच्छी प्राइस पे। यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने सबको बता दिया, सब इसमें शामिल हो सकते हैं, ये ऐलान है सबके लिए कि कौन अल्लाह ताला के साथ बै करना चाहता है। इसीलिए हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, उम्मत के लोगों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुमसे ऐसा सौदा कर रहा है जो अल्लाह मंजूर कर चुका है, फिर तुम पीछे क्यों रहते हो। तो ये तो वो सौदा है, अगर तुमसे अल्लाह कर लेता है तो तुम तो खुशियां मनाओ, इसलिए कि तुम एक जवाल पजीर चीज को, जिसने वैसे ही ढह जाना है, जिसने वैसे ही खत्म हो जाना है, एक हकीर चीज को दे के, यानी अपने खोटे सिक्के दे के तुम कितनी लाजवाब और अबदी जिंदगी खरीद रहे हो, सोचो। तो अल्लाह ताला ने इन हकीर से जान की कितनी बड़ी कीमत लगा दी, इसके ऊपर तो भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मगर चूंकि सौदा हाथों हाथ नहीं है ना, मैंने आपको जैसे इसीलिए ये मिसाल दी कि आप घर बुक कराते हैं और वो बताते हैं आपको जी आपका घर फलां वक्त में तैयार हो जाएगा, और आप कीमत देते हैं, फिर उसकी कीमत देते रहते हैं किस्तों में, इसी तरह ये डील है कि इसी वक्त नहीं आपको मिल रहा, इसी वजह से आपको नजर नहीं आता, और आप कहते हैं कि तो कुछ है ही नहीं, ये तो जो मुझे 4 टके मिल रहे हैं ना किसी कंपनी से, किसी जगह से, या लोगों की तारीफें, या ये ही सबसे असल चीज है, क्योंकि वो नहीं ना नजर आ रही, वो पेमेंट नहीं अभी नजर आई, वो चीज आपके हाथ में नहीं अभी आई, मगर जब कीमत अदा होगी पूरी तो हाथ में आएगी ना, खुद सोचे। और ये कीमत एक दिन की देने की नहीं है कि आज सबक पढ़ा तो आज कीमत देने खड़े हो गए, बस आज उसके बाद अगले हफ्ते तक भूल ही गया, नहीं, ये कीमत सारी जिंदगी देनी है, क्योंकि जान की कीमत आपने लगाई है और माल की कीमत लगाई है, ये पूरी जिंदगी देनी है, ये एक दो दिन नहीं है। और इस अनफुस में, नफ्सों के अंदर, मैंने आपको जैसे बताया, ख्वाहिशें भी हैं, मर्जियां भी हैं, चाहते भी हैं, ये सब है, उन सब को देना है, सारी जिंदगी देना है। और माल देने के अंदर सिर्फ ये नहीं कि मैं डोनेशन बहुत देती हूँ, कभी कभी अपने माल की कुर्बानी दे के अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाना, ये भी माल देना ही है। कभी कभी अपने आवर्स कम कर देना, अपनी जॉब में से टाइम को कम कर देना, दो जॉबें कर रहे हैं तो एक कर लेनी, अपने बिजनेस में 7 दिन जाते हैं तो 6 दिन चले जाना कि एक दिन मैं अल्लाह के लिए निकालूंगी, ये भी माल की कुर्बानी देना, ये भी माल दे देना। तो आज ये चीजों को हम शायद इतनी बड़ी वैल्यू ना दें और इसके लिए कोई स्टेप ना लें, मगर जिस दिन आंख बंद होगी ना, तब असल इस सौदे की हकीकत पता चलेगी, तब इसकी भी किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी, कब्र से मिलना शुरू हो जाएंगी, कब्र में खिड़की खोल दी जाएगी जन्नत की। और देखिए किसने, कौन कह सकता है कि ये घाटे का सौदा है, इसलिए कि जिसकी चीज है ये उसी को दे रहे हैं ना, वही हमसे खरीद रहा है और उसकी पेमेंट दे रहा है, हमारी कौन सी ये अपनी चीजें थी, कौन सी ये अपनी चीजें थी, कौन सी ये जिंदगी अपनी थी, कौन सा ये पैसा अपना था, क्या लेके आए थे जब हम पैदा हुए थे, तो पैसे के साथ पैदा हुए थे, नहीं खाली हाथ थे, उसने दिया। और बिजनेस भी देखे, मैंने आपको बताया ना, आज इस जान के बड़े खरीदार हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं घर हैं, कहीं बिजनेस है, कहीं जॉब है, कहीं कोई और चीज है, कहीं बाजार है, कहीं और एक्टिविटीज हैं, कहीं फन है, कहीं एंटरटेनमेंट है, बड़े आपके खरीदार होंगे, लेकिन जब आप सौदा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहाँ पे अपने आप अपनी चीज को बेचते हैं, जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, सबसे ज्यादा। आज मैंने आपको कहा ना कि कोई भी आपको खरीदेगा तो क्या दे देगा आपको, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा मजा, थोड़ी सी इंजॉयमेंट, उसने आपका वक्त ले लिया, आपकी जिंदगी ली, आपका माल लिया, और थोड़ा सा आपको कुछ, थोड़ा सा जॉय दे दिया, थोड़ी सी खुशी दे दी, वहां पे आप अपने आप को बेच देते हैं। और एक अल्लाह सौदा कर जिसमें 100% मुनाफा है, इससे बेहतर कोई और डील आप कर ही नहीं सकते। और किसी इंसान के साथ भी हम डील करते हैं ना, तो उस पे एतमाद कर लेते हैं कि हाँ मिल ही जाएगा मुझे मुनाफा। बैंक के साथ डीलिंग करते हैं लोग, उससे उसमें अपने लाखों करोड़ों रखवा देते हैं और उनको ये होता है कि नहीं जी इतने अरसे में इतना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, आराम हलाल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मगर ट्रस्ट करते हैं ना आप उनपे। हालांकि बैंक भी तो बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं, मगर हम उनपे ट्रस्ट करते हैं, और अल्लाह की बात है यहाँ पे, क्या उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसी को सूरह सफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं उस तिजारत की तरफ जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगी, वहां पे भी डील की बात की है। तो देखिए ये डील जो कर ले वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है, इसीलिए तो खुशियां मनाने का कहा गया। समझ लें कि आपकी वैल्यू बन गई, समझ लें हमने बहुत बड़ा सौदा कर लिया। इसलिए हजरत उमर देखिए ना रोते थे, जब ढेरों माल आ गया तो कहते थे कि उमर क्या था, ऊंटों की दुमे तेरे हाथ में होती थी और बकरियां चराता था, और किसी की भी बकरियां थोड़े से पैसों में चरा देता था, आज अमीरुल मोमिनीन कहलाता है। और एक जगह उनका आता ही बात कि वो कहते थे कि इससे पहले, इस्लाम से पहले मेरे लिए बहुत बड़ी यही बात थी कि मेरे पास 100 ऊंट हो, तो मुझे लगता था कि मैं सारी ही दुनिया से ज्यादा कामयाब हो गया। ये तो देखो इस दीन ने आके हमें बताया कि इज्जतें किसमें हैं, तुम्हारी कीमत क्या है, क्यों अपने आप को बेवकूफ करते हो, क्यों अपनी कीमत थोड़ी लगाते हो, तुम अल्लाह के हाँ कीमती हो, वो तुम्हारा कदरदान है, देखो उसने तुम्हारी कीमत कैसी लगाई। और ये जान जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह कि हक अदा ना हुआ, लगा भी दी तो क्या हो गया, उसी की तो चीज थी दी हुई, उसके हाथ में क्या ना बेचेंगे, उसी को ना देंगे क्या। तो इसलिए ये डील तो वो है जो करनी ही करनी है, ये डील तो वो है जो किसी को हाथ से जानी नहीं देनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जो ये सोच के बैठ जाए ना कि हमने तो नहीं ये डील करनी, तो फिर वो सोच ले कि आखिर फिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा इस जिस्म का और इस जिंदगी का। तो खुलासा क्या हुआ है सारी बात की, जिस्ट क्या है कि हमारी ये जिंदगी अल्लाह ताला चाहता है कि वो खरीद ले और इसके बदले हमें जन्नत दे दे। अगर हम समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला के साथ ये डील करनी है और इस जिंदगी को बेचना है, तो अपनी दिलचस्पियां, अपने शौक, अपने मशगले, अपनी मोहब्बतें, हर चीज फिर उसको देनी पड़ेगी, उसके सपुर्द करनी पड़ेगी। अगर फिर वो वक्त मांगता है तो वक्त देना पड़ेगा, कुव्वत ताकत मांगता है तो वो देनी पड़ेगी, जान मांगता है तो जान भी खुशी खुशी देनी होगी। ठीक है, इसीलिए तो कहा गया ना, मारते हैं और मारे जाते हैं। सब उसकी हाथ में अपने आप को दे देना होगा। फिर मैं और मेरी और क्यों और क्या और कैसे, ये सारे क्वेश्चन खत्म करने होंगे। और अल्लाह की हर बात के ऊपर सबमिट करना आना चाहिए फिर। और ये कब तक की डील है, ये पूरी जिंदगी की है। ठीक है, पूरी जिंदगी की है, ये एक दिन की दो दिन की नहीं है। जो जिन्होंने ये डील्स की, फिर वो सहाबी रसूल है ना, जब शहीद हो रहे थे तो फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, को पता है जान दे के भी मैं कामयाब हूं। कामयाब है वो इंसान। और फिर अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में लगाने को तैयार हो जाए। माल का ये नहीं मैंने कमाया मैं जिधर मर्जी खर्च करूं, चाहे उड़ाऊं चाहे जलाऊं, तुम्हें क्या, नहीं फिर ये नहीं कह सकते। ठीक है, फिर उसके बाद माल भी वहां लगाना है जहां पे अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि माल मेरा नहीं है ये। आप देखें किसी और की चीज हो, आप अपनी मर्जी से नहीं उसको खर्च करते, सिर्फ अपनी अपनी चीज जिसको समझते हैं उसको खर्च करते हैं। अगर आपने समझा कि माल मैंने अल्लाह को दे दिया, बेच दिया, जो आप ठीक है अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उसको ऊपर अपना हक ना समझे फिर। जिधर अल्लाह ताला चाहेगा उधर लगाएं, जिधर वो मना करता है उधर कैसे लग सकता है। फिर ये ना कहना हमारी चीज हमारी मर्जी, तुम कौन होते बताने वाले, हम लुटाएं चाहे उसको इसराफ करें चाहे कहीं पे भी हराम में डालें उसको, हमारे हमने मेहनत से कमाया था, फिर ये नहीं कहना। देखें याद रखें, दुनिया के मामूली से घर बनाने के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सारा माल उस घर बेचने वाले के हाथ में दे के बैठ जाते हैं, सारी जिंदगी की कमाई, और मिलता क्या है, एक मिट्टी गारे का घर जिसमें 100 नुक्स निकलते हैं, फिर परफेक्ट वो भी नहीं होता। और अल्लाह ताला इस जिंदगी को ही तो मांगता है कि जो कितनी लंबी जी लोगे उसको अल्लाह को दे दो और इसके बदले में वो जन्नत देगा। जन्नत ये आम मिट्टी गारे का घर नहीं है जिसमें हमेशा रहोगे। तो कीमत देने को तैयार है अपनी जात, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात, अपना माल, खुद अपना आप खुद उसकी कीमत है। अपना आप देना होगा, अपनी सब बिलोंगिंग देनी होगी। अल्लाह हू अकबर। और अगर बचा बचा के रखना है, थोड़ा अल्लाह को, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहां, थोड़ा अपनी मर्जी का, थोड़ा दुनिया की मर्जी का, थोड़ा लोगों की मर्जी का, थोड़ा रिश्तेदारों की मर्जी का, सब जगह अपने आप को बांटा हुआ है, तो ऐसा सौदा अल्लाह नहीं करता फिर। सौदा करेगा तो पूरा पूरा। तो फिर आला जन्नत की कीमत पूरी नहीं होगी अगर आपने पूरा नहीं है दिया। क्या इसके बगैर नहीं हम जन्नत में जा सकते? क्या अब आपके जहन के अंदर आ रहा होगा, देखो फलां भी तो चली गई, उस कुत्ते को पानी पिलाने पे चली गई, फलां तो कलमा पढ़ ले तो चला गया। हाँ, जन्नत में चले जाएंगे लोग और भी चले जाएंगे, लेकिन देखें एक जाना कैसा होता है, एक जाना वो होता है मतलब आपने यहां से मतलब पाकिस्तान जाना, आपको एक डायरेक्ट फ्लाइट में आपको बिठा दिया जाए, और एक जाना वो है कि जिसमें आपको ऊंट पे बिठा दिया जाए। दोनों पहुंच तो जाएंगे, लेकिन एक कैसे पहुंचेगा और दूसरा कैसे पहुंचेगा बताएं। तो जिसने वादे के ऊपर यकीन किया वो फिर कैसे डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाएगा। और मुनाफकों वाला सौदा नहीं करना, यहाँ हम सौदा करते हैं और उसके बाद जो है पता ही नहीं है, उसके बाद याद ही नहीं है कि क्या कहा था, तो वो वाला सौदा नहीं है। सौदा वो वाला करना है जिसमें वाकई कंप्लीट सबमिशन हो। सौदा वो वाला करना है कि जिसमें फिर मुड़ना नहीं है, जिसमें फिर उसके बाद पछताना नहीं है, उसके बाद सोचना नहीं है, बस डील कर लेनी है। तो ये सौदा खुशकिस्मतों का सौदा है। तो कौन कौन ये डील करना चाहता है? इस ऐलान को सबने सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें सुना दिया, ठीक है। फिर जन्नत का सौदा करने के लिए कौन खरीदार है? उसके लिए जन्नत का वादा है, कामयाबी का वादा है, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वदालिका वल फौजुल आदीम। ये बड़ी कामयाबी है, जिसको ये डील मिल गई ना वो बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए इस डील के अंदर शामिल होने वाले खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई कि ये कभी कामयाबी इस दुनिया में मिल नहीं सकती। ये कामयाबी वो कामयाबी है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने अप्रूव कर दी ना, जिसको एक्सेप्ट कर लिया, वो फिर वो पा लेगा कि जो सारी जिंदगी आप यहां मेहनत करके नहीं पा सकते। वदालिका हुवल फौजुल आदीम, ये बड़ी कामयाबी है। तो ये आयत तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, और ये याद रखने वाली आयत है, ये भूलने वाली नहीं है, ये सब कुछ दे चुकी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जिंदगियों पे कोई नहीं कह सकता कि ये जिंदगी तो मेरे नाम है तुम्हारी, और मैं ही इसका मालिक हूं, और अब ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है। हम अपनी चीज में से ही कुछ दे सकते ना, किसी और की चीज से तो नहीं दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आजाद पैदा किया, और अल्लाह के साथ ये हम डील कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के आगे खुद को डालेंगे और खुद को उसके हवाले करेंगे, तो फिर वो उसके ऊपर ये कीमत देगा। अब अल्लाह ताला ने बताया कि ये जो इस डील में शामिल होते हैं ना लोग, देखिए वो एक्टिव हैं, वो अल्लाह के रास्ते में हैं, मारते भी हैं मरते भी हैं, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले हैं। अब हमने लड़ना तो नहीं, लेकिन ये समझना चाहिए हमें कि इसका मतलब अल्लाह के रास्ते में कुछ करने वाले हैं, ये बैठने वाले नहीं है, फिर ये सिर्फ आरजुएं करके और खुश होने वाले नहीं है, ये जन्नत की सिटीजनशिप आसान नहीं है, इसके लिए फिर मेहनत करनी होगी, यानी और इतनी मेहनत कि जिसके अंदर फिर अगर अपनी जान भी जाती है तो चली जाए, यानी जान की भी परवाह नहीं। तो इतना मुश्किल सौदा नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ये तो बड़ा सस्ता आपको मिल गया। आप तो छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा, हकीर से घरों के लिए सारी जिंदगी अपनी लगा देते हैं लोग, दो दो जॉबें करती हैं लोग, दिन और रात मेहनतें करते हैं फिर एक घर के लिए, तो ये तो अल्लाह जन्नत दे रहा है। और क्या पता जिंदगी पता नहीं 50 साल की है कि 60 साल की है, कितनी जल्दी खत्म ही हो जाए, तो फौरन ही मिल जाएगी फिर आपको चीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों की ना कुछ सिफात है जो इस डील में शामिल होते हैं। फिर वो नजर आती हैं सिफतें, सिर्फ जुबानी बातें नहीं होती, तो वो कैसे नजर आते हैं, वो कैसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये सिफात होती हैं। अब उसके अंदर हम अपने आप को देखेंगे, हमारे अंदर है कि नहीं है, अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो पैदा करनी है। क्या है सबसे पहली सिफत? अताइबून, वो तौबा करने वाले होते हैं। कभी कभी तौबा करने वाला ताइब नहीं कहलाता, जो हमेशा तौबा करते रहते ना वो ताइबून। किसी का नाम ही रख दे मसलन, कि ये मिसाल के तौर पे कोई नाम ऐसा मैं सोचूं, कि किसी का नाम कब कोई पढ़ता है, जब वो कोई काम बार बार करता है ना, तो तौबा करने वाले यानी ये बार बार तौबा करते हैं। और तौबा का मतलब होता है ताबा यतोबू से पलट आना। हर सोच, हर फिक्र, हर खुशी, हर गमी, हर लम्हा अल्लाह की तरफ लौटने वाले, अल्लाह को याद रखने वाले। हर खुशी में भी, हम तो खुशियों में भूल ही जाते हैं, हर गमी में भी अल्लाह की तरफ पलटते हैं, हर परेशानी में अल्लाह की तरफ पलटते हैं, हर उतार चढ़ाव में जिंदगी के, हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ पलटते हैं। अगर आजमाइश आए और अल्लाह ना याद आए, अगर मुसीबत पड़े और अल्लाह ना याद आए, तो इसका मतलब ताइबून नहीं है। ठीक है, ताइबून तो वो हैं जो कि ऐसे रहते हैं कि बार बार पलटते हैं, और तौबा करने वाले भी ताइबून में शामिल है, कि गलती होने का एहसास हो जाना और उसके बाद तौबा करना, ये भी उनकी सिफत है। इससे पता चलता है, एक हमें हौसला भी मिलता है, कि इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा नहीं कि इनसे कभी गलती ही नहीं होती, अगर उन्होंने वादा कर लिया है तो अब कभी गलती ही नहीं होगी, नहीं, कभी हो भी सकता है, कभी भूल भी सकते हैं, कभी गफलत भी छा सकती है, वादे के खिलाफ कर लिया तो ये हो सकता है। लेकिन इनकी अच्छी बात क्या है कि ये उसके बाद फौरन एहसास कर लेते हैं, और ये नहीं कहते कि तो क्या हो गया अगर मुझसे ये हो गया तो। लोग तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुनाह कर लेते हैं, मैंने इतना सा कर लिया तो कि इतना बड़ा हो गया, नहीं, वो फौरन रियलाइज करते हैं, खुद से अंदर खुद को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, एतराफ करते हैं, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, दोबारा अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं, अब नहीं मैंने करना, मैंने तो अल्लाह से सौदा किया हुआ, उस रास्ते पे कंटिन्यू नहीं करते रहते, पलट आते हैं, वापस आ जाते हैं, कि अल्लाह गुनाहगार सही, खताकार सही, मगर अल्लाह मैंने तुझे छोड़ के कहाँ जाना है, मैं इस दर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, तो पलटते हैं वो। तो तौबा गुनाहों से भी करते हैं, और तौबा अपनी जिंदगी भी उनकी ताइबून वाली होती है, बार बार पलटने वाली। फिर और उनकी क्या है? आबिदून, इबादत करने वाले। इबादत आबिद अब्द से निकला है, और अब्द का मतलब होता है गुलाम, जो गुलामी करते हैं, बंदगी करते हैं, इताअत करते हैं अल्लाह की। और एक तरफ गुलाम होता है तो दूसरी तरफ कौन होता है? मास्टर। अल्लाह ताला को अपना मास्टर समझते हैं। और गुलामी कैसी होती है? जिसमें ना सोच अपनी होती, ना फैसले अपने होते, ना ख्वाहिशात अपनी होती हैं, ना पहनना ओढ़ना अपना होता है, कुछ भी अपना नहीं होता, सब मालिक का होता है। तो आबिदून है यानी वो अल्लाह ताला के आगे फरमा बरदारी करने वाले हैं, वो अपना कुछ इख्तियार नहीं समझते अपनी जिंदगी पे, वो अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। और इसलिए भी कि अल्लाह ताला ने तो पैदा किया, या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, सबसे पहला अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में यही फरमाया सारी इंसानियत को, कि अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि उसने ही तो तुम्हें पैदा किया है, वो इसको अपने अल्लाह का हक समझते हैं, कि ये उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। फिर वो हामिदून है, हमद करने वाले हैं। हमद में क्या होता है? वो तारीफ जिसमें शुक्र के जज्बात भी मौजूद हो, वो हमद होती। तो ये उठते बैठते हर हाल में अल्लाह के इनामात को, उसके एहसानात को याद रखते हैं, महसूस करते हैं, उसका इजहार भी करते हैं, दिल भी भरा हुआ है इस चीज से, अल्लाह की एहसान मंदी के एहसास से, और जुबान से भी हम्द निकलती है, उनके कलमाए शुक्र निकलता है। सो के उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाथरूम टॉयलेट यूज करके आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर वक्त उनकी जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह ही रहता है। हत्ता के कोई चीज मर्जी के खिलाफ भी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल कहते हैं। ठीक है, इतने शुक्रगुजार होते हैं वो। यानी जिंदगी जो जैसी भी चल रही हो, हम्द उनकी जिंदगी का एक मुस्तकिल ट्रेट है। ये ना सिफात उनकी कभी कभी वाली नहीं है। हमें तो कोई चीज अच्छी लगे तो तभी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमारी मर्जी के मुताबिक हो, हमारी खुशी की हो तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई चीज मर्जी के खिलाफ हो जाए तो कितनी दफा कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, नहीं कहते। तो ये वाले वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से डील बनाई हुई है ना, उनकी परमानेंट ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, और फिर वो क्या है, साइहून। साइहून से एक मुराद जो उलमा ने ली है वो है साइमून, सौद के साथ, यानी रोजा रखने वाले, क्योंकि रोजा भी क्या है, साहा यसी हुआ है ना, तो उसी से है, यानी रोजा रखना भी एक तरह से, जैसे सियाहत पे लोग चले जाते हैं तो वो अलग हो जाते थे ना, पहले जमानों के अंदर लोग ना रहबानियत इख्तियार कर लेते थे, दुनिया से अलग हो गए, खाना पीना घर बार सब छोड़ के अलग जंगलों में जाते थे, तो ये उनकी सियाहत होती थी। तो हमारे दीन में तो ऐसी रहबानियत नहीं है, तो हमारे दीन में क्या है, रोजा। रोजा जो रोजे रखते रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रमजान के रमजान रोजे रखते हैं, नफली रोजे भी रखते रहते हैं। अब हर महीने में मसलन मंडे थर्सडे का रोजा है, 13, 14, 15 का रोजा है, शव्वाल के रोजे हैं, 9, 10 मुहर्रम का रोजा है, जिलहज्जा के 9 दिन में भी रोजे रखते हैं, फिर इस तरह से करके वो फर्ज रोजों के अलावा भी नफरी रोजे रखते हैं। और दूसरा इसका मफहूम है जिहाद, इस उम्मत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाहत मेरी उम्मत का जिहाद है, लेकिन इस हदीस में चूंकि थोड़ा जोफ है इसलिए सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जिहाद एक उनकी सियाहत है। और फिर साहे, साहे से मुराद क्या है कि अल्लाह की खातिर जो निकलने वाले हैं, अल्लाह की खातिर निकले, सियाहत के लिए मतलब है कि अल्लाह के साथ लोगों का ताल्लुक जोड़ने के लिए ये जो निकलते हैं, क्योंकि ये मेहनत ना घर बैठे नहीं हो सकती, ये घर बैठे रहे आप और सारी इंसानियत को अल्लाह से जोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए निकलना होगा, दूसरों तक पहुंचना होगा, उनको अल्लाह का तारुफ कराना होगा, तो घर से निकलेंगे तो होगा। हम घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं, पार्टीज के लिए निकलते हैं, लंचेस के लिए निकलते हैं, मेल मुलाकात के लिए निकलते हैं, लेकिन एक है अल्लाह की खातिर निकलना, वो है साए, जो इसके लिए नकलो हरकत करते हैं। इसमें दावते दीन का काम भी आ गया, दावा का काम भी, और हसूले इल्म का काम भी, कि इल्म हासिल करने के लिए तालिबे इल्म भी इसमें आ जाता है, जो कि अल्लाह के दीन के लिए को दीन को सीखने के लिए निकलता है, वो भी हो गया। इसमें अल्लाह की खातिर हिजरत करना भी हो गया, कि किसी जगह रह के आप दीन को नहीं प्रैक्टिस कर सक रहे तो आप हिजरत करते हैं, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, और अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं वो भी इसमें आ गई। तो इसका मतलब है कि ये सौदा करने के बाद बैठ नहीं जाना, निकलना है, निकले बगैर पैगाम आगे नहीं पहुंच सकता। आप जब निकलेंगे तो क्या होगा, मुखालफत भी होगी, कभी रुकावट भी आएगी, कभी अपने कामों का आप वो रिजल्ट नहीं देख सकेंगे जिस जो आप चाहते हैं, तो डिसहार्ट भी होंगे, तो तब क्या करें। अर्राकिउन अस्साजिदून, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, यानी वो ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। नमाज में तो रुकू करना है, वो तो करना ही करना है, फर्जों में भी करना है, नफलों में भी करना है, मगर सारी जिंदगी भी रुकू की तरह ही गुजारनी है, कि अल्लाह के आगे झुके रहें, अल्लाह के आगे बिछे रहें। ठीक है, और साजिदून भी सजदा करने वाले कि इंसान ना अपनी सबसे ये जो इज्जत वाली जगह है ना, ये पेशानी, ये माथा, इसको जमीन में रोल देता है वो, जमीन पे रख देता है वो, सबसे नीचे जो जगह है उस पे अपनी सबसे ऊंची जगह को रख देता है, अपना सर रख देता है। इससे ज्यादा कोई इंसान खुद को गिरा नहीं सकता किसी के आगे, जितना सजदे की हालत में इंसान गिर जाता है। इसी वजह से आपको पता है अल्लाह ताला ने हराम किया सजदे को किसी और के लिए भी, किसी के आगे आप ऐसे नहीं गिर सकते, झुक सकते, ये शिर्क है। सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज है, क्योंकि वो इस लायक है कि हम अपनी सबसे इज्जत वाली जगह को सबसे नीचे करते हैं। और जब सहाबी रसूल ने पूछा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम कोई बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं, तो उसने कहा या रसूल मैं जन्नत में आपका साथ चाहिए, तो आपने क्या फरमाया था कि फिर सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी तुम्हें भी फिर कुछ करना पड़ेगा, सजदे ज्यादा करो। तो सजदे सिर्फ फराइज में नहीं, सजदे नफलों में भी, यानी ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ाए जाए, सजदा तिलावत भी सजदा है, सजदा शुक्र किया जाए, तो अल्लाह ताला को ये पसंद है। और झुकी हुई जिंदगी पसंद है, अकड़ी हुई पसंद नहीं है। ठीक है, अलामिरूना बिल मारू वन्ना अनिल मुनकर, जो हुक्म देते हैं नेकी का और बुराई से रोकने वाले, अमर बिल मारू व नहीं अनिल मुनकर का काम करने वाले। और आपको पता है उम्मत मुस्लिमा का तो ये तरीका है कि उनको ये काम करना ही करना है, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो तुम इसे बुराई को देखे हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में उसको बुरा जाने। और ये फरमाया सबसे अदना दर्जा है ईमान का, सबसे यानी सबसे कम तरीन ईमान का दर्जा है। अगर सिर्फ आप दिल में ही हमेशा बुरा सोचते रहते हैं ना, और कभी ना बोलते हैं ना को भी कोशिश करते हैं उसको करने की, लेकिन ये सबसे अदना, तो फरमाया सबसे अदना है, और अगर ये भी नहीं है ना तो फिर ईमान ही नहीं है, फिर ईमान ही नहीं है। सोचे इसलिए कि ये तो कमजोर तरीन ईमान का दर्जा था, अगर दिल में भी नहीं बुरा सोचते तो फिर इसका मतलब तो आपस में शामिल ही हो गए, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर अंदर कुछ रह ही नहीं गया। एक हदीस में है ना कि जो हाथ से बुराई के खिलाफ लड़े वो मोमिन है, जो जुबान से लड़े वो मोमिन है, जो दिल से लड़े वो मोमिन है, इसके बाद ईमान राई के दाने के बराबर भी बाकी नहीं बचता। और अगर हम नहीं उन चीजों को बुरा समझते, हम होमोसेक्सुअलिटी को देखते हैं, नहीं हाथ से रोक सकते जुबान से बोल दे, जुबान से भी अगर ऐसी जगह पे रहते नहीं बोल सकते, दिल में तो बुरा जाने, या फिर ये कहना नहीं नहीं ये तो किसी का हक है, ये तो नेचुरल है, या और बेहयाइयों के कामों को देखना, बेशर्मियों के, चोर बाजारियों के, करप्शन के, और उसके बाद फिर उसको बुरा ही नहीं समझना, नहीं क्या करें उन बेचारों की भी तो मजबूरी है, ये तो इसका मतलब आपने बुरा समझना ही बंद कर दिया। तो ये बुराई से कॉम्प्रोमाइज अगर कर लिया ना तो फिर ईमान कहीं नहीं है। और ये तो किसी का प्राइवेट मामला है तो हमें क्या जरूरत है कि हम बुरा सोचें, तो आपने उस बुराई को भी बुरा समझना बंद कर दिया। और फिर आगे से ये कहना कि हमें क्या इस बात से, हम अपना काम करें, वो शिर्क करें, वो बेहयाई करें, वो बेईमानी करें, वो हरामकारियां करें, आप हंस हंस के दिखाते रहें कि करते रहो जो कर रहे हो, हम तो ओके हैं तुम्हारे इससे। तो ये ऐसे नहीं होते। सूरह मायदा में हम पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल पे लानत की गई थी, और उसकी वजह क्या थी, उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, अमर बिल मारुफ नहीं अनिल मुनकर का। आपको पता है ये काम क्यों इतना इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट कि जहां हम बुराई देखें तो हम कहें कि ये बुराई है, चाहे हमारे घर वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, चाहे कोई है, हम कहें उसको। ये अलग बात है कि हिकमत से कहना है, प्यार मोहब्बत से कहना है, और उसमें खैर ख्वाही जरूर होनी चाहिए, जब खैर ख्वाही पीछे होगी ना तो फिर खुद ही लहजा और भी अच्छा हो जाएगा और अल्फाज भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कहना है। लेकिन ये काम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी इतनी दफा हम ताकीद पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्यों? इसलिए कि इसका अपनी जात पे असर पड़ेगा। आप खुद सोचे ना, एक बंदा बुराई को बुरा कहता है, अब उसके पास कहाँ ये चांस रह जाएगा, गुंजाइश रह जाएगी, ये लेवरेज रह जाएगी कि वो खुद भी वही बुराई करना शुरू हो जाए। ये तो नहीं ना हो सकता। एक बंदा लोगों को नेकी का इतना कहता है, इतना कहता है, अब उसके पास कहाँ इतनी गुंजाइश होगी, कहाँ ये मौका उसके पास रह जाएगा कि वो खुद वो नेकी ना करे। तो अगर हमने अपनी जात को सही रखना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बुराई से मना करें और भलाई की बात लोगों को बताएं। इसके बाद अपने अंदर जुर्रत खत्म हो जाएगी बुराई करने की, और नेकी से पीछे रहने की जुर्रत भी खत्म हो जाएगी। वो इंसान नहीं कर सकेगा, फिर कहेगा कि खुद ही अंदर से जमीर बोलता है ना कि लोगों को मैं मना करती हूँ, खुद कैसे करूं। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से नहीं कर सकेगा। इसी तरह लोगों को कहते रहे कि भी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, आए मैं सारा वक्त लोगों को कहती रहती हूँ, तो खुद ना पढ़ू तो फिर कैसे, ये तो नहीं हो सकता। तो खुद वो चीजें, वो खुद उसके लिए हौसला और उसके लिए गुंजाइश पैदा होगी कि वो उन नेकियों को अपना ले और वो बुराइयां छोड़ दे। और जिसने ये किरदार नहीं अपनाया और उसने कहा जो मर्जी जो करता रहे, तो वो फिर खुद भी वही करता रहेगा। फिर उसको, जिसने किसी को बुराई से नहीं रोका ना, वो खुद भी वो बुराई कर लेगा। तो अगर अपने आप को सेव करना है ना, और अपने आप को सेव करना है, अपने आप को बचाना है, तो फिर हमें ये काम करना है। वो लोग क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, लोगों को बुराई से मना करते हैं, यानी उनसे बुराई बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, मगर याद रखिए एक बात, इब्ने कय्यिम ने फरमाया कि बुराई से मना करने के भी दर्जात हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है ना कि इससे बुराई कम होती है, तो आप जरूर बुराई से रोकिए। अगर आपको ये पता चल रहा है इससे बुराई खत्म हो जाएगी, इम्कान है, तो जरूर आप रोकें। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आप किसी बुराई से रोकने से वो बुराई बढ़ जाएगी, इसका एहतमाल है, इसका चांस है। क्योंकि बाज लोग आपने देखा ना, बड़े ही जिद्दी किस्म के होते हैं, उनको जिस बात से रोके वो कहते हैं और मैं करूंगी। तो वहां पे आपने मौके का इंतजार करना है, जब मौका होगा तब करना है, नहीं अनिल मुनकर का काम वहां पे फौरन नहीं करना, ठीक है, जहां पे आपको ये डर है कि ये और ज्यादा हो जाएगा, मगर दिल में तो बुरा सोचते ही रहेंगे ना, ठीक है। और वल हाफिजून, और हिफाजत करने वाले किसकी, ली हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की, यानी अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज रखी हुई है ना, ये है हलाल और यहां से हराम की बाउंड्री लाइन शुरू हो जाती है, ये है जायज और ये है तुम्हारे लिए नाजायज। तो एक बाउंड्री है जिसके अंदर हमें रहना है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। लिबरल होने के नाम के ऊपर ये नहीं करते कि सारी हदों को पार कर जाएं और कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ढीठ होके कर रहे हैं और कोई परवाह नहीं है और हमें कौन रोकने वाला है, नहीं, वो रुक जाते हैं जहां पे ये देखते हैं यहां पे अल्लाह ताला ने बाउंड्री लाइन खींच दी है, नहीं मेरा ईमान है और मैं ईमान वाली होते हुए ये लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि अल्लाह की हदें हैं ना, हर हर फील्ड में है, मसलन आपका खानदान है उसमें भी कुछ हदूद है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी है, आपकी माशरती जिंदगी में भी है, सियासत में भी है, बिजनेस में भी है, खाने पीने में भी है, कपड़े पहनने में भी है, हर एक में बाउंड्रीज हैं, वो लिमिट्स हैं, उनको उनकी पाबंदी करनी है, उनको समझना है कि ये अल्लाह ताला की लगाई हुई हदूद है, मैंने इनको पार नहीं करना। इसमें सारे ही अल्लाह के हुक्म आ गए ना फिर, कि रुक जाने का जहां पे कहा गया रुक जाओ, मत आगे बढ़ो। रेड लाइट देख के हम फौरन ब्रेक लगाते हैं जितनी भी स्पीड पे जा रहे हैं, अल्लाह की हदें आ जाए तो उनको कुछ समझते ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह की हदों को कायम करने वाले, वह बशीरिल मुमिनीन, ऐसे ईमान वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इनके लिए है वो जन्नत का सौदा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये जो सौदा किया है वो इन लोगों के साथ किया है जिनमें ये क्वालिटीज हो। देखिए ये सौदा जैसे कि हमने बात की ना, ये मोमिन के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो मोमिन जो होता है ना, वो प्रेफर करता है अपनी आखिरत को दुनिया पे। तो उन दोनों चीजें एक वक्त में पॉसिबल तो नहीं हो सकती ना। या तो आप दुनिया को अपना सेंटर बना सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ योर लाइफ, या आखरत को बना सकते हैं। जब अल्लाह की तरफ आप रुख करते हैं ना, तो दुनिया की तरफ खुद ब खुद पुश्त हो जाती है। और इसकी प्रैक्टिस अल्लाह ताला रोजाना हमें नमाज में कराता है। जब नमाज में आप खड़े होते हैं तो रुख किसकी तरफ होता है? अल्लाह की। और पीछे क्या होता है? सब चीजें पीछे रह गई, किचन पीछे रह गया, जॉब पीछे रह गई, बेडरूम पीछे रह गया, नींद पीछे रह गई, खाना पीना पीछे रह गया, बोलचाल पार्टी सब चीजें पीछे हैं। सब कुछ छोड़ के अल्लाह मैं तेरे आगे खड़ी हो गई। अल्लाह ताला चाहता है कि सारी जिंदगी ऐसे हो, और जिधर हमने कदम रखे होते हैं वहीं खड़े रहते हैं। ये नहीं कि चल के इधर जा रहे हैं, चल के इधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता है इसी तरह जम के खड़े रहो, जम जाओ। ये नहीं है कि आज कुछ कहा, कल कहीं और पहुंच गए, परसों कहीं और, फिर तरसों ख्याल आया, फिर वापस आ गए। ऐसे ना हम नमाज में करते हैं और ना ही अल्लाह हमारी जिंदगी ऐसी चाहता है। तो जैसे नमाज में हम अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं ना अल्लाह के, ना बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं, तो उसी तरह जिंदगी होनी चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह की तरफ रुख कर लें। तो ऐसे इंसान के तो फिर अमल का भी रुख अल्लाह की तरफ होगा, और सारी एक्टिविटीज का भी रुख अल्लाह की तरफ होगा। अल्लाह ताला ये चाहता है कि खुद को आप, जैसे मैंने आपको बताया, सबमिट कर देना कि अल्लाह के दीन को ऐसे इख्तियार करना है कि इसको अपना जाती मिशन बना लेना है, अपना प्राइवेट मामला बना लेना। जैसे आप ओन करते हैं ना किसी चीज को, तो अब आपको पता है कि ये मैंने ही करना है सारा काम, क्योंकि ये मेरा ही है। इस हद तक आप दीन को अपनाएं कि इसको अपना जाती मामला समझें। ठीक है, ये नहीं कि बस ये दीन है तो ये अलग और मैं अलग हूं। ये सौदे में शामिल है, बातों से सौदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बताया अल्लाह के रास्ते में लड़ना, ये क्या है? अल्लाह का काम है ना, और उसके लिए वो जान लगाते हैं और माल भी लगाते हैं। तो हम लड़ने में तो नहीं है हम शामिल हो सकते, लेकिन हम अल्लाह ताला के दीन में तो लगा सकते हैं अपनी जान भी, अपना माल भी। तो इसको पहले तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करें और इसको एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इसके अंदर काम करें। फिर आप देखेंगे कि ये दीन ना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, या आपकी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी सेंटर ऑफ लाइफ है, उसका हिस्सा बन जाएगा, या आपका मिशन बन जाएगा ये दीन का काम। तो बशीर मोमिनीन, इसके लिए खुशखबरी दो मोमिनों को। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे, अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे। मा काना ली नबी लिल नबी, नहीं है नबी के लिए, वल्लदीन आमनू, और लोगों के लिए जो ईमान लाए, अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो इस्तिगफार करें मुशरिकों के लिए, उनके लिए बख्शिश मांगे, वलो कानू उली कुरबा, अगरचे चाहे वो उनके रिश्तेदारी क्यों ना हो। यहां से बता दिया गया कि देखें, जो सूरत है ना, सूरह बरात है, ये इसमें बरात है ऐसे सब लोगों से जो कुफर और शिर्क के रास्ते के ऊपर चले। तो ईमान वालों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि पहले बताया गया ना कि आप इनके लिए इस्तग़फार ना करें, आप 70 दफा भी इनके लिए इस्तग़फार करेंगे तो अल्लाह ताला इनको नहीं माफ करेगा। फिर मना ही कर दिया गया, अब आके फाइनल ये कह दिया गया कि अब तो इस्तग़फार करनी ही नहीं है। पहले तो कहा गया था ना कि 70 दफा भी करें तो इनकी माफी नहीं, अब करनी ही नहीं है, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिम बादी मा तबैयन लहुम अन्नम अस्हाबुल जहीम, लेकिन एक बात है, ये कब नहीं करनी? जबकि आपको वाजे हो गया है कि वो जहन्नुम वाले हैं। और ये कब वाजे होता है, कंफर्म कब हो जाता है किसी का? जब वो कुफर पे मरता है, जब वो सरीहन साफ तौर पे कुफर पे दुनिया से जाता है, तो कंफर्म है कि ये जहन्नमी है। आप उसके लिए दुआ नहीं करनी मगफिरत की, ये अल्लाह तू उन्हें बख्श दे, इसे मना किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसको अपना कुर्ता भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर मना कर दिया गया। तो ये है फाइनल वाला हुक्म। क्यों इस चीज से मना किया गया कि आपने नहीं इनके लिए दुआए मगफिरत करनी? क्यों? कोई आपको रीजन समझ आती है? इसलिए कि अगर आप कहेंगे कि अल्लाह इनको माफ कर दे, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफर को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, तो आपने तो बेवकत कर दिया ना, ईमान को बेवकत कर दिया। ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह कुफर के साथ ही इनको तो माफ कर दे। ईमान की है वैल्यू, ईमान को आप बेवकत नहीं कर सकते। तो आप उनके लिए नहीं करेंगे दुआ, क्योंकि अल्लाह ने अब फैसला कंफर्म कर दिया कि अब वो जहन्नमी है। इससे ज्यादा बड़ी और वाजे आयत क्या हो सकती है? फिर भी लोग कहते हैं कि जो कुफर के ऊपर मरा, लेकिन आपको क्या पता हम उनके लिए दुआ करेंगे, और वो तो पता नहीं इतने चैरिटी वर्क करते थे और वो तो जन्नत में जाएंगे। उनके लिए दुआ करने से भी मना कर दिया गया, जन्नत में जाने का तो बात की बात है, दुआ भी नहीं करनी उनकी बख्शिश की। हाँ, जब वो जिंदा है तब जरूर उनके लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी हुए थे उहद में, तो आपने क्या फरमाया था? अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, अल्लाह इनको नहीं पता। वही जो जालिम जो उनको जख्मी करने वाले थे, उनके लिए ही दुआ कर रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ की, इसलिए कि अभी वो जिंदा थे। तो इसलिए आप देखते हैं अंबिया की दुआएं भी अपनी कौमों के लिए, उनकी बख्शिश के लिए मिलती हैं हमें, लेकिन जब मर जाए कोई तो फिर नहीं। अब इसके अंदर बाज दफा सवाल जहन के अंदर आता है ना, तो सहाबा के जहन में भी आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप के लिए की थी दुआ, तो उसका जवाब है वमा कान इस्तिग़फारु इब्राहिम अली अबीही, नहीं थी इस्तिग़फार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी बाप के लिए, मगर इल्ला वादा इया, कि उस वादे की वजह से जो उन्होंने वादा किया था उससे, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल रहे थे ना वहां से, तो उस वक्त उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करता रहूंगा, वो आपको माफ कर दे। तो लेकिन फलम्मा तबैया ना, जब उनको भी पता चल गया, ये देखिए यहाँ पे तो यही कहा जा रहा है ना पिछली आयत में, कि मिम बादी मा तबैया ना लहू, कि जब पता चल जाए कि वो जहन्नमी है तो फिर नहीं दुआ करनी। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जब पता चल गया, जाहिर हो गया उनके लिए, अन्ना वो अदुव्वुल लिल्लाह, कि वो दुश्मन है अल्लाह का, और कैसे पता चला था? कि जब वो कुफर पे ही मार गया, तबर्रा मिन्हु, तो बेजार हो गया उससे, तो फिर नहीं उन्होंने दुआ की, फिर उससे बरी हो गए। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में दुआ करें, मगर मरने के बाद काफिर के लिए नहीं दुआ हो सकती। और इसमें एक बात ये भी याद रखें, कुछ लोग ऐसे लोगों को कहते हैं कि फलां वो कब्र पे जाता था, मैंने नहीं उसके जनाजे में जाना, फलां इस पे करता था तो मैंने नहीं उसके लिए दुआ करनी। नहीं, जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान कहलाता है, और कोई गवाही देने वाला, चाहे एक भी इंसान मुसलमान है जो ये गवाही देता है कि ये मुसलमान था, तो फिर आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये काफिर। और कैसे तबैयन कैसे होता है, जाहिर कैसे हो जाता है? मैंने आपको जैसे बताया कि इलानिया कोई कुफर पर मरे या वही आ जाए, तो वही में आ गया जब पता चल गया कि ये तो अल्लाह का दुश्मन, इसी के ऊपर मरा है, तो फिर नहीं उसके लिए दुआ की जाएगी। और इसी तरह को इलानिया कुफर पर मरे तब भी नहीं। इन्ना इब्राहिम अल अव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े दर्दमंद थे और बड़े तहम्मुल वाले थे, तो इसी वजह से तो वो अपने बाप के लिए, ऐसे बाप के लिए जिसने उनको जलाने की में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनके लिए भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की। तो अव्वा वो है जो अल्लाह के खौफ की वजह से बड़ी आहें भरने वाला हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े आखरत के खौफ से, जहन्नुम के खौफ से बहुत आहें भरा करते थे। और हिल्म, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी इंसान में, कि दूसरों की जो ऐसी बातें हैं जो तकलीफ दे हैं, उसे दरगुजर कर लेना, तहम्मुल का मुजाहिरा, बर्दाश्त का मुजाहरा, ये नहीं कि हर टाइम एक वबेला खड़ा रखना, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े खड़े करके और चीखना चिल्लाना और पलाम और बड़ा एक ड्रामा बना के खड़े हो जाना, ये तहम्मुल थोड़ी होता है। जरा सी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई ट्रैफिक खड़ी हो गई, या किसी ने कुछ कह दिया, या आप टाइम पे कोई नहीं पहुंचा, तो भी इतना बड़ा वावेला खड़ा करके आप बैठ के वो हो जाए। कई लोग अपने ताल्लुकात भी इस वजह से दूसरों से खराब कर लेते हैं कि उनके अंदर तहम्मुल नहीं होता। तहम्मुल, तहम्मुल बर्दाश्त एक चीज होती है जो तो हमारे अंदर से उठ गई भी है। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना लेते हैं और उनपे इतना वावेला खड़ा करते हैं। दरगुजर करना भी तो कोई चीज होती है, जाने दो, बर्दाश्त कर लो, दरगुजर कर लो। तो और अगर कोई मुंह से कुछ कह दे तो फिर तो पता नहीं क्या करते हैं। कभी किसी के रवैये के ऊपर ऐसे बातें करते हैं, जो भी हमें नई चीज पसंद आती। अब कोई लेट हो गया, अभी लेट हो गया तो उसके ऊपर हमारी आपे से बाहर हो रहे हैं। किसी ने कोई बात जरा सी अनोइंग कह दी तो उसके ऊपर एक मसला खड़ा करके बैठ गए। किसी ने आपको कोई चीज बताई नहीं जो आपने उसको कहा था, रिमाइंड नहीं कराया तो उसके ऊपर आप हो रहे। मतलब छोटी छोटी बातों को हम इशू बनाते हैं। हालांकि देखिए, इतने बड़े अल्लाह के नबी हैं, उनकी अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी तारीफ की है, और अल्लाह ताला को हिल्म लोगों में बहुत पसंद है, हिल्म वाले लोग, तहम्मुल वाले लोग। तो आपे से बाहर ना हुआ करें, और फौरन फोन उठाया उसको कुछ कह रहे हैं, फौरन उसको टेक्स्ट करने बैठ गए, तो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वमा क्या अल्लाह, और नहीं अल्लाह ताला लियुदिल्ला कौम बाद इहदाहुम, कि वो किसी कौम को बाद इसके कि जब उसने हिदायत दे दी है उनको, तो उनको भटका दे। हत्ता युबई नलहुमा यत्तकून, यहाँ तक कि वो उनको वाजे कर दे जो जिस चीजों से वो बचे। क्या मतलब है इसका? यानी असहाबा कराम को ये अभी हुई कि हमने तो कई लोगों के लिए ऐसी दुआएं मांग दी हुई है जो कि काफिर थे मरे, और अब हम क्या करें, अब उनको परेशानी हो जाती थी। तो अल्लाह ताला हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता जब तक कि वो वाजे अहकामात ना दे दे। यानी अब जो आपने पहले कर लिया हुआ है, जब तक उसके बारे में वाजे हुक्म ना आ जाए, उस वक्त तक किसने जो पिछला किया हुआ है उसके ऊपर उसकी पकड़ नहीं होगी। ठीक है, जो पीछे पीछे गुजर गया उस वक्त तो पता नहीं था, तो अब जब अल्लाह ने वाजे कर दिया उसके बाद किसी की गलती गलती शुमार होगी, उससे पहले की नहीं। ठीक है, अब किसी को कोई बात पहुंची ही नहीं, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, वो गलती कर रहा है। इल्म होने के बाद गलती करना वो बुरा है। इल्म पता नहीं था और कुछ गलती से हो गया तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो ये बाज़ उलमा कहते हैं कि ये कयामत तक का एक कानून है। ठीक है, कि पता नहीं है, कोताही हो गई, बाज़ लोग कहते हैं नहीं समझ थी उस वक्त, नहीं पता था उस वक्त, किसी ने बताया ही नहीं था कभी, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जब इल्म आ जाए ना, तो फिर फौरन उन चीजों को छोड़ भी देना चाहिए, फिर अपनी पिछली कोताही पे अल्लाह से माफी भी मांगनी चाहिए। ठीक है, इन्ना अल्लाह बिकुल शय अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। कौन किस नियत से बदअमली कर रहा है, इसको पता है कि नहीं पता, कितना पता था और अब ऐसे बन के बैठा रहा कि जैसे मुझे पता ही नहीं है, और क्या था, ये सब चीजें अल्लाह जानता है। इन्ना अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला तो वो है कि जिसकी बादशाहत आसमानों और जमीन की है। पे अल्लाह के अहकाम कोई मामूली बात नहीं, उसकी बातें कोई मामूली नहीं, वो तो रब है जहानों का, युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और वो ही मौत देता है, तुम्हारी तो जिंदगी और मौत भी उसके हाथ में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, जो मोमिन है ना उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं है। किसी औरों की तरफ ना देखो, जब कोई मुश्किल आए तो किसी की तरफ ना भागो, अल्लाह ही है तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा मददगार, तो अल्लाह की तरफ देखो, वो तुम्हारा हामी व नासिर है जो तुम्हें सबसे बचा सकता है। तो इसलिए उसी की नाफरमानी से भी डरना चाहिए, क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया ना तो कोई पनाहगाह नहीं रहेगी। सूरह आले इमरान में है ना, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो ना, उसकी मदद हो तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता, और वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन होगा जो उसके बाद फिर तुम्हारी मदद करेगा। जब इंसान ये समझ लेता है ना कि इस जात के बगैर तो मैं बेसहारा हूं, मैं बेयारो मददगार हूं, इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो वो फिर पलट पलट के उसी जात के आगे झुकता है, फिर वो पलट पलट के उसकी तरफ जाता है, फिर वो किसी कीमत पे उसको नाराज नहीं कर सकता कि वो तो मेरा रब है। अल्लाह ताला इन आयात की हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा देना जो तुझसे ऐसा सौदा करने वाले हों, ए अल्लाह तू हमसे इस सौदे को कबूल कर लेना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت.